ओम शांति। जनवरी मास हम सब बच्चों को प्यारे साकार बाबा की स्मृतियां पुनः ताजा कर देता है। पूरे कल्प में केवल हम बच्चे ही हैं जिनका भगवान से मिलन होता है और बाबा का ज्ञान प्राप्त करके हम सब बच्चे अपना कल्प कल्प का जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। उनमें भी कुछ आत्माएं होती हैं जिनका साकार से मिलन होता है, जिन्हें साकार की पालना का सौभाग्य प्राप्त होता है। और ऐसा ही भाग्य हमें भी प्राप्त हुआ है जब साकार बाबा के सानिध्य में रहने का हमें सौभाग्य मिला, अवसर प्राप्त हुआ। आज से लगभग 50 वर्ष पहले की बात है और सन 1961 की जब 61 के अंत में हमें इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संपर्क में आने का मौका मिला। लगभग 15 वर्ष की आयु थी, पढ़ाई कर रहे थे और उस समय बाबा का ज्ञान मिला। लखनऊ में शिक्षा प्राप्त कर रहे थे तो बाबा पहले तो सब जगह जाया करते थे, बीच बीच में जहाँ सेवा केंद्र होते थे तो एक दो साल के बाद शायद लगभग 62 में बाबा का कानपुर आगमन हुआ। लखनऊ से 2 घंटे का रास्ता है, बाबा जब आते थे तो सब बच्चे बाबा से मिलने जाते। तो लखनऊ वालों ने भी यह निश्चय किया कि बाबा के पास मिलने जाएंगे और एक दिन सुबह बस में भर के सब कानपुर पहुंचे। पहुंचना तो जल्दी था लेकिन पहुंचते पहुंचते समय हो गया, बाबा की क्लास लगभग पूरी हो रही थी और बस सब बाबा के सम्मुख पहुंचे। बाबा की तो पर्सनैलिटी ही ऐसी थी, ऐसा लगता था जैसे कोई फरिश्ता ऊपर से उतर आया हो। गोरा रंग, लंबा कद, ये तो स्थूल बात, लेकिन मुख्य बात ये कि आंखों में इतनी चमक होती थी कि बस जैसे किसी को एकदम चुंबक की तरह बाबा खींच रहे हो। और जब बाबा स्नेह से कहते थे आओ बच्चे, आओ मीठे बच्चे, ऐसे हाथ फैला के, तो बस बाबा की तरफ सब खींच के चले जाते थे। सब पार्टी वाले एक एक करके मिले और जब हमारा भी टर्न आया तो बाबा ने कहा आओ बच्चे, बाबा तुम्हारा बहुत समय से इंतजार कर रहा था। तो हमने सोचा कि हाँ, सुबह आना था जल्दी, 7-8 बजे तक पहुंचना था लेकिन 9 बज गए, तो इसलिए बाबा इंतजार कर रहे होंगे। तो हमने कहा हाँ बाबा, बस को आने में लेट हो गई। और तो बाबा ने कहा हाँ, लेकिन बाबा तो बहुत समय से इंतजार कर रहा था। बाबा का भाव हर चीज में देखो कितना गुह्य होता है, कोई लौकिक स्थूल की बात नहीं होती, लेकिन इंतजार माने कल पहले के हम बिछड़े हुए बाबा के बच्चे हैं और एक एक बच्चे को बाबा ने ढूंढा है। अक्सर करके कभी कई बार दादियां पूछती हैं, बहनें पूछते हैं, भाई हमने भगवान को ढूंढा या भगवान ने हमको ढूंढा, तो क्या उत्तर होगा? हाँ, बाबा ने ढूंढा, क्योंकि हम तो द्वापर के शुरू से ही ढूंढ रहे थे, इतने सारे 42 जन्मों तक ढूंढते ही रहे, नहीं मिला, लेकिन भगवान ने जब आके ढूंढा तो तुरंत ही बाबा ने ढूंढा और हमने भी बाबा को पहचान दिया। तो एक तो ये उस समय बाबा, हाँ बच्चे, बाबा बार बार बाबा बोले कि बाबा बहुत समय से इंतजार कर रहा था, आओ बच्चे, बहुत बाबा ने स्नेह दिया, प्यार दिया। फिर बाबा ने पूछा क्या नाम है, तो हमारा लौकिक नाम श्री है, जैसे श्री नारायण बोलते हैं, श्री आता है ना, तो हमने बताया कि बाबा हमारा नाम श्री है। तो क्या बच्चे, क्या बोला? फिर हमने बोला थोड़ा तेजी से श्री। फिर बाबा ने पूछा अच्छा क्या श्री, हमने कहा हाँ बाबा। तो बाबा तो देखो कितने जॉली मूड का, हाँ तो आओ आओ दादी, दादी आओ आओ, दीदी आओ, दीदी मनमोहनी, दादी जी और दादियां वहां गंगे दादी सब आओ आओ, आओ। आज बाबा को एक बच्चा मिला है बहुत समय बाद, जो मतलब बाबा से भी ऊंच है, महान है। देखो ऐसा हो सकता है क्या? लेकिन बाबा का भाव क्या, कि हम तो देखते रहे कि बाबा कुछ कटाक्ष कर रहा है, चुटकी ले रहा है। बाबा में ये विशेषता, बच्चों के साथ बच्चा जैसा, युवानों के साथ युवान, बूढ़ों के साथ बूढ़ा, जैसा परिस्थिति होती थी बाबा तुरंत ही अपने को ढाल करके उन बच्चों को अपना बना लेता था, तो हम तो समझे नहीं। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, अभी कोई भी बच्चा श्री तो हो नहीं सकता, ब्रह्मा बाबा भी अपने नाम के आगे श्री नहीं लगा सकता, क्योंकि श्री किन के नाम के आगे लगता है? श्री श्री तो शिव बाबा के लगता है, और श्री देवताओं के आगे, जिनकी आत्मा भी पवित्र और शरीर भी पवित्र। ये शरीर तो विकारों से पैदा हुआ है और आत्मा भी कलयुग के अंत में अपवित्र हो गई है, तो इसीलिए श्री तो कोई नहीं लगा सकता। तो इसीलिए बच्चे अभी तो श्री जैसा बनना है, अभी बाबा तुम्हारा नाम बदलता है, बदल करके मोहन रखता है, तो मोहन जैसा सतयुगी दुनिया में बनना है और तब हम सब श्री टाइटल लगा सकते हैं। श्री माने श्रेष्ठ, जिनकी आत्मा भी पवित्र शरीर भी पवित्र। तो देखो बाबा की एक एक चीज में ज्ञान की गुह्यता भरी रहती थी। कोई बच्चे आते थे, मिलते थे, क्या नाम है बच्ची, किसी का नाम मानो माया देवी होता था, हाँ माया, अब तो माया को छुट्टी करनी है, चलो बाबा तुम्हारा नाम अभी लक्ष्मी देवी या गीता देवी, गीता ज्ञान, कुछ भी ज्ञान युक्त। बाबा को कोई भी पुरानी दुनिया की कोई भी चीज बिल्कुल पसंद नहीं थी। ऐसे कोई बच्चा आता था, क्या नाम है बच्चे, बाबा गरीब दास मानो नाम है, तो गरीब अभी तो भगवान मिला है, तुम अमीर से अमीर हो गए हो, कितना ज्ञान का खजाना बाबा विश्व का मालिक बनाता है, तो बाबा कि अब तुम्हारा गरीब दास नाम कैंसिल, अब से तुम अमीर चंद मानो, तो बाबा वो कोई भी हमारा पुरानी स्मृति हमारे हमें न रहे, ये हमारा मरजीवा जन्म हुआ है, यही बात बाबा कहता है। तो अभी हम सब ये समझे कि कोई भी पुरानी बात हमें स्मृति में ना आए, जो कि पुरानी दुनिया की है, पुराने देश है, हाँ परिवार की बात है, परिवार में लौकिक में रहना है, संबंध निभाना है, लेकिन बाबा कहता है मर जीवा जना, यानी पुराने संबंध कार्य व्यवहार करना है, रहना है, लेकिन उनकी स्मृति न रहे, पुरानी दुनिया की बातें हमें अपनी तरफ न खींचे, इसलिए पुरानी बात बाबा सब भुलाना चाहता था। इस तरीके से ये बाबा के साथ पहली मीटिंग थी। फिर तो बाबा के साथ बहुत बहुत मीटिंग्स होती रही। हम पढ़ाई करते थे उस समय यूनिवर्सिटी में, बस एक साल बाद यूनिवर्सिटी जाना हुआ, पढ़ना हुआ, फिर इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हुआ वहां। लेकिन हमारा दिल नहीं था जाने का। हमने कहा बाबा अभी जाना, चार साल पढ़ना और इतना समय जाएगा, और शुरू से ये था कि बस समय कम है, कलयुग दुनिया का अंत होने वाला है, जितनी कमाई करनी है कर लो और इस तरीके से आध्यात्मिक कमाई। तो हमने अपने लौकिक पिताजी को बोला कि हम तो नहीं चाहते पढ़ना। तो उन्होंने कहा कि नहीं, पढ़ाई तो करनी है और बिना पढ़े तो क्या करेंगे। तो हमने कहा कि भाई बाबा तो ये कहता है ज्ञान में, वो भी ज्ञान में, हम सब लोग ज्ञान में नए नए आए हुए थे, तो तब तो बाबा होते थे और कोई भी अगर दुविधा होती थी हम लोग साकार बाबा के पास चले जाते थे, बाबा से मिलकर उस दुविधा का अंत करते थे। तो उन्होंने कहा चलो बाबा के पास चलते हैं, बाबा जैसा कहेगा, बाबा तो त्रिकालदर्शी जानी जाननहार। हम कहते हैं हालांकि ब्रह्मा बाबा कई बार मुरली में बोलता है। क्या बोलता है बाबा? अभी थोड़े दिन भी पहले बोला था, क्या बोला? मतलब शिव बाबा जानी जाननहार है, त्रिकालदर्शी है, ब्रह्मा बाबा तो बाहर की बात, जो बाहर का परिचय वो जानता है, लेकिन शिव बाबा अंदर की बात त्रिकालदर्शी। लेकिन हमारा इतने वर्षों का अनुभव है, क्योंकि शिव बाबा का सानिध्य ब्रह्मा बाबा को होता था, चंदन के साथ रहते रहते जैसे चंदन की खुशबू आ जाती है, जैसा संग वैसा रंग, तो धीरे धीरे ब्रह्मा बाबा भी ना जानी जाननहार जैसे होता जा रहा था। अंदर की बात वो तो हम बताएंगे कैसे बाबा अंत में कर्मातीत अवस्था के समय बिल्कुल जैसे जानी जाननहार हो गया था, वो तो आगे बताते हैं। तो बाबा के पास गए तो कि बाबा से पूछेंगे जो बाबा कहेगा। तो हमसे पहले भी दो भाई लोग बैठे हुए थे, कुमार लोग, और एक बाबा के पास गया, आपस में पहले बात की थी। बाबा के से जब मिलना होता था तो टाइम डिवाइड होता था, अच्छा भाई 10 बजे ये मिलेंगे पार्टी, 10:15 10:30 ये मिलेंगे, 11 बजे ये, ऐसे अलग अलग। और बाबा बहुत अच्छी भाषणा देता था, बाबा से मिलते थे। तो एक भाई गया बाबा से मिलके आया, तो हमने पूछा क्या कहा, पूछा कि भाई वो तो फर्स्ट ईयर में इंजीनियरिंग के पढ़ता था, उसने कहा कि बाबा से हमने पूछा और बाबा ने कहा बच्चे पढ़ने की अब जरूरत नहीं है, सेवा में लग जाओ और अपना भाग्य बनाओ। तो वो मतलब ये जान करके, वो मतलब हमने जाना उससे प्रश्न उत्तर करके। फिर दूसरे भाई का और टर्न था हमारे बाद, उसने भी ग्रेजुएशन किया था लेकिन उसके परिवार वाले चाहते थे ये बिजनेस में लग जाए, और वो ज्ञान में नहीं थे। तो वो कहा करते थे भाई अगर तुम्हें आगे और पढ़ना है या ज्ञान में ये करना है तो तुम परिवार से अलग, हम तुम्हें फैमिली का शेयर नहीं देंगे प्रॉपर्टी का। तो वो पूछने गया था तो बाबा ने कहा हाँ बच्चे ग्रेजुएशन तो कर लिया, परिवार का बिजनेस है उसे संभालो, और बाबा का ज्ञान में भी चलते रहो। फिर हमारा टर्न आया तो जैसा वो लोग चाहते थे वैसा बाबा ने उत्तर दिया। हमारा टर्न आया, हमने पूछा तो बाबा ने कहा कि नहीं तुम्हें तो पढ़ना है। तो हमने कहा अरे बाबा ये डबल स्टैंडर्ड क्यों, अभी आपने उन दोनों को बोला नहीं पढ़ना है, हमें आप कह रहे हो पढ़ना है, अभी तो समय कम है। तो बाबा ने कहा नहीं बच्चे, बाबा सबकी जन्म पत्री जानता है और किसका किसमें भाग्य बहुत ऊंचा है, बाबा उस अनुसार उन्हें राय देता है। बाबा जानता है तुम्हारे द्वारा बाबा को कितनी सेवा करानी है और देश विदेश की और किन क्वालिटेटिव आत्माओं की, इसीलिए तुम्हें पढ़ाई करनी है और उसके बाद जो बाबा को सेवा करानी है वो समय पर प्रत्यक्ष होती जाएगी। तो देखो कैसे बाबा जानी जाने, बाद में वो जो पहला भाई था जो फर्स्ट ईयर में था और पढ़ रहा था जिसको बाबा ने छुड़ा दिया, वो तो कुछ साल के बाद ही बस उससे कोई बीमारी वगैरह हुई, उसका देहांत हो गया, शरीर छोड़ दिया। तो समझो अगर वो चार पांच साल तक पढ़ता और उसके बाद वो लगता तो उसका तो पढ़ाई में ही सारा समय निकल गया होता था और पुरुषार्थ का उसको कोई समय नहीं मिलता था। तो जितने वर्ष उसे मिले उसने खूब बाबा की सेवा की, यज्ञ की भी सेवा की और पढ़ाई में टाइम वेस्ट नहीं किया। तो देखो ये जानी जाना नार का दूसरा भाई, उसका भी ये है कि भाई परिवार की जब प्रॉपर्टी और वो सब मिल गई और धीरे धीरे परिवार वालों को भी ज्ञान में लाया, बहुत अच्छी तरीके से सारा परिवार ज्ञान में चल रहा है। अगर वहीं से ही अगर वो हो जाता संबंध विच्छेद तो कोई भी सेवा नहीं होती। तो कैसे भगवान निराकार तो को तो कहते हैं हम ज्ञान का सागर है, जानी जाना ना रहे, लेकिन जब इस सृष्टि पर आके वो पार्ट बजाता है तो एक एक पार्ट कैसे जानी जाना नार का बजाता है, उन सब का हम सबने जीवन में अनुभव किया। इस प्रकार से वो चलते रहे और आगे, और बाबा को किस प्रकार से कार्य कराने होते हैं, वहां पर इंजीनियरिंग कॉलेज में गए तो वहां पर सेंटर नहीं था उस जगह धनबाद में, तो बस बाबा से हमने कहा बाबा वहां जाके तो हॉस्टल में खाना पड़ेगा और हम तो नहीं चाहते कि नहीं बच्चे वहां खाओ, लेकिन दृष्टि देके भोजन को पवित्र करके खाओ। अगर हम जब नई दुनिया की स्थापना पवित्रता के बल पर कर लेते हैं तो क्या भोजन को शुद्ध नहीं कर सकते? लेकिन भाव क्या था बाबा का कि चूंकि ज्ञान में नए थे समय, तो थोड़े समय कुछ महीने ही वहां खाया और उसके बाद बाबा ने वहां सेंटर खुलवा दिया। और फर्स्ट ईयर पूरा होते ही होते होते उससे पहले ही सेंटर खुल गया और उसके बाद तो तीन वर्ष तक फिर शुद्ध भोजन मिला। तो बाबा कितना वो, अगर उस समय जब हमारी नींव ही कच्ची थी और उस समय अगर बाबा ये बोलता कि नहीं बच्चे तुम्हें तो खुद पका के खाना है, शुद्ध भोजन खाना है, ये तो शायद हमारे लिए और डिफिकल्टी होती, आज यहाँ तक पहुंचे ही नहीं होते। लेकिन हर व्यक्ति के परिस्थिति देख करके, इसीलिए कई बार मुरली में आता है बच्चे कहीं मन मूंझता है तो बाबा से राय लो, बाबा राय देगा जिसमें हमारा कल्याण है। और इस रीति से ये चलते रहते हैं। कई ऐसे दृष्टांत हुए जिससे कि ये हुआ बाबा कैसे एक एक पग पग पर गाइड करता है। तो वहां पर ये पढ़ाई देखो, एक बार हमें याद है हम हॉस्टल में थे और बाबा कहते हैं ना भक्ति मार्ग में भी भगवान भावना का भूखा है, ज्ञान में भी हमारे अंदर की कितनी भावना है बाप दादा के प्रति, यज्ञ के प्रति, उसके ऊपर हमारा पुरुषार्थ भी आधारित है। तो हमें याद है एक हम हॉस्टल में थे, वहां पर फिर पहले साल के बाद ही एक भाई और ज्ञान में आ गए, हम दो भाई थे हॉस्टल में रहते थे भोजन सेंटर पे और इस तरह इंजीनियरिंग कॉलेज की पढ़ाई हो रही थी। और एक बार हम लोगों के मन में आया और सेंटर खुल गया, वहां पर जो टीचर इंचार्ज थे वो संदेशी थे, ध्यान में जाते थे गुरुवार को जैसे भोग लगता है, तो एक बार हमने सोचा कि आज हम बाबा को भाई हॉस्टल में कुछ बना करके ले चले और गुरुवार का भोग है भोग वो करें। तो पहले तो इतने मोबाइल फोन वोन और हॉस्टल में ये सब तो होते नहीं थे, रात को विचार आया, अगले दिन ही सुबह उठ के हम लोगों ने दोनों ने कुछ बाबा के लिए कुछ हलवा बनाया, भोग जैसा थोड़ा, और उस बनाने में देर हो गई। यूजुअली तो अपना क्लास होती है 7 से 7:30 तक, फिर भोग वोग लगता है उस दिन, भोग पहले लगता था 7 बजे, लेकिन उस दिन बहन बैठी और हम लोगों को भोग बनाने में ये देर हो गई। आधा पौना घंटे बाद हम लोग पहुंचे और देखो ये भी बाबा कैसे बच्चों की नींव पक्की करता है। तो बार बार मतलब इतने देर तक बहन बैठे रहे, लेकिन उस दिन बाबा ने ना जैसे ध्यान में नहीं खींचा उन्हें, बहुत याद 15 मिनट आधा घंटा पौन घंटा 1 घंटा। और जैसे ही हम लोग पहुंचे और थोड़ा बाबा का भोग रखा थाली में, दूसरी छोटा बहन से पूछा रखा और तुरंत ही बाबा ने उन्हें खींचा। और फिर बाबा ने यही संदेश दिया, देखो मेरे ये बच्चे इतने प्रेम से वहां पर भोग बना रहे थे, बाबा ऊपर से देख रहा था, और इनका भोग आए बिना बच्ची बाबा तुम्हें कैसे खींचता। तो देखो बातें छोटी होती हैं और उस समय ज्ञान की इतनी पराकाष्ठा तो होती नहीं सारी, लेकिन अंदर की भावना का बाबा भोगा है, उर की बात नहीं। तो अंदर जितनी हमारी प्रेममयी भावना शुद्ध भावना होती है, बाबा उसके आधार पर फिर हम बच्चों को और आगे बढ़ाता रहता है। इसी रीति से हमारा जब पहला पोस्टिंग हुआ वहां पर आसाम में, एक भी सेंटर नहीं था वहां पर, हमारी दिल नहीं थी जाने की वहां पर। तो हमने कहा बाबा ये वाला जॉब नहीं लेते, दूसरा और जॉब है ये वाला ले लेते हैं, ये अच्छा है वहां पर सेंटर है। तो बाबा ने कहा नहीं बच्चे ये ही लेना है, क्योंकि बाबा को वहां पर जैसे यहाँ पर बाबा ने पढ़ने भेजा और यहाँ सेवा का विस्तार हुआ, इसी तरह वहाँ कोई भी सेंटर नहीं। 1967 की बात है, 67 जब पास करके निकले तो पहली पोस्टिंग वह आसाम में बहुत दूर शिव सागर, तब तक कोई भी सेंटर नहीं था। और कलकत्ता में पहला सेंटर, कलकत्ता पास में पास सेंटर था, वो भी 1000 माइल की दूरी पर, इतना दूर था। तो बाबा तुम्हें भेज रहा ये समझो, और जब तुम्हारा काम हो जाएगा सेवा तो बाबा तुम्हें बुला लेगा। चलो हम अनिच्छा से होते हुए भी गए और बाबा ने बिल्कुल, और हर सप्ताह बाबा पत्र लिखा करता था। बाबा का पत्र भी लिखने का ऐसा ढंग और ऐसी चीज होती थी कि वो आपको अगर देखेंगे ना, तो मुझे पता नहीं यहाँ पर है कि नहीं, इसमें पूरा दिख तो नहीं रहा है, हैं? देखो जरा लाइट का, और वो जरा तो लाल लाल अक्षरों से, लाल पेंसिल होती थी, छोटा सा कागज होता था और लाल पेंसिल से, जरा इसका वो पॉइंटर भी उसमें रखा है, हैं? नहीं, लेकिन हमें वो पढ़ के बताएंगे थोड़ा सा ना, उसके अंदर अगर होता है, हैं? हाँ, तो इसके अंदर इसमें वो पॉइंटर देना। तो ये सिंपली एक सैंपल दिखाते हैं उस समय बाबा कैसे दूर में बैठे भी बच्चों की पालना करता था। और बाबा हमेशा कहते हैं, एक है मेरे मतलब ये मुख वंशावली ये बच्चे, और तब तो विदेशों में तो कोई सेंटर नहीं था, तो बाबा ने पत्रों के द्वारा ही लंदन अमेरिका उस समय कोई भी बच्चा जाता था, उनके द्वारा बाबा इतनी सेवा कराता था कि बस। इसमें पता नहीं ये कुछ देखने में पढ़ने में आ रहा है आपको, हाँ, इसमें ये इसे स्टेशनरी कर दो, चेंज नहीं कहीं भी, इतने देर में ये चेंज हो जाता है। कोई भी कहीं पर, हाँ हो गया। तो ये देखिए, ये शिव सागर जगह का नाम है, शिव सागर निवासी रूहानी मीठे सर्विसेबल बच्चे मोहन, वहां पर बस गए और शुरू में ही ना बस थोड़ा सा सर्विस करते थे, चित्र की प्रदर्शनी, चित्र चार चित्र होते थे, त्रिमूर्ति झाड़ लक्ष्मी नारायण सीढ़ी, बस उन पर समझा के। और बाबा को देखो काम कराना होता है ना, कैसे बाबा बाबा बोलता है, जब बाबा देखता है कि बच्चे इतना अनुभवी नहीं है, समझाने में उतना एक्सपर्ट नहीं है, और समझने वाले कोई अच्छे आए, तो बाबा क्या करता है, क्या मुरली में बोलता है, बाबा जैसे खुद आके उसके मुख के द्वारा सर्विस करता है। अब हम भी इतना, तब तो सर्विस का कोई विस्तार नहीं था, इतना ज्यादा समझाने का समझाते थे वो सब, लेकिन कितनी बार ये अनुभव होता था, अरे ये तो हमारी सामर्थ्य नहीं है समझाने की, लेकिन ये कैसे, जैसे अनुभव होता था कि बाबा ही आकर के समझा रहा है। एक बार का अनुभव है, मतलब वहां पर बड़ौदा में ना, तब सेंटर कोई नहीं था और प्रदर्शनी बंबई वालों ने वहां लगाई हुई थी, वहां जाके हम ये समझा रहे थे, और वहां पर एक भाई ने एक बोला, इंग्लिश की पार्टी है, फॉरेनर्स, डबल फॉरेनर्स, कि आप इन्हें इंग्लिश में समझा दो। सोचा कि भाई ये इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा है और ये, तब तो हमारे भाई बहन इतने पढ़े लिखे नहीं होते थे। तो बस हमने कहा ठीक है, आप यहाँ खड़े होइए। हम अंदर गए, बाबा का आह्वान किया, जैसे बाबा आपका ही इज्जत की बात है, आपको ही समझाना है, हमें तो समझाने का इंग्लिश में इतना फ्लुएंट अनुभव नहीं है। और पूरा 10-12 का विदेशी जर्मन और डेलीगेशन एक पूरा आया हुआ था। तो बस अंदर से बाबा को याद करके समझाया, और हमें खुद आश्चर्य है कि कुछ भी अभ्यास न होते हुए भी इतना फ्लुएंटली उन्हें 1.5 घंटे तक पूरा वो सारा का सारा प्रदर्शनी वगैरह समझाई, और बस ऐसा महसूस होता था। लेकिन बाबा देखो सभी अनुभव कराता है, ये अनुभव वगैरह करा के और हमें भी ये हुआ कि अरे हम तो बहुत समझा सकते हैं। 2-3 दिन बाद दूसरे आए, हमने कोशिश करी, कुछ नहीं समझा सके पूरा। क्यों? कंटिन्यूटी, बाबा का आह्वान नहीं किया। बाबा का ना, जब ये होता है कि बाबा आपको ये सेवा करानी है, तो बाबा ये भी अनुभव कराता है कि बाबा आपके द्वारा कर रहा है, और साथ में बाबा ये भी अनुभव कराता है कि ये नहीं होना चाहिए कि मैंने ये सेवा करी। और उसका भी अगर कुछ आया फिर बाबा साक्षी हो जाता है। तो इस तरीके से, तो इतनी दूर आसाम में बाबा ये पत्र लिखा करते थे। तो ये मैं दिखा रहा था, शिव सागर निवासी रूहानी मीठे सर्विसेबल बच्चे मोहन, ये वहां जो आने वाले थे, कमला और शांति, रखमा और क्या है रामेश्वर, इन सब, कार्तिक, भगवती, खेम का युगल, ये सब जब वहां पर क्लास, थोड़े दिन में बाबा करण करावन आ रहा है। बाबा बस वहां सेवा होती थी, हम मुरली पढ़ते थे, और बस जो शुरू में पाठ चला, माताएं मारवाड़ी ज्यादा आते थे, वो ध्यान में चले जाते थे, और फिर बस ध्यान में जाके वो कृष्ण को साक्षात्कार, नारायण और सुरक का। तो बाबा को जब सेवा करानी होती है, बाबा किसी भी रीति से सेवा करा लेता है, बच्चों में चाहे उतनी सामर्थ्य हो न हो, लेकिन करण करावन हार बाबा है। तो ये सबका थोड़े दिन में ही ना इतना बड़ी, उस जमाने में 67, 68, 69 में, उस समय ये 80-100 की क्लास जैसे वहां पर एस्टेब्लिश हो गई। उस जमाने में जबकि 1-2, 2-4 ही आते थे, क्योंकि बाबा ने उनका ध्यान का पार्ट खोल करके और उन आत्माओं की उस तरह बाबा नींव पक्की करता रहा। तो ये सबके जैसे की पत्रों का नेक्स्ट, तो ये एक पत्र का वो होता था, और बाप का याद प्यार, और इसी का बैक साइड नेक्स्ट होता है ये। तो ये तो मैंने एक सैंपल, तो ये जो देख रहे हैं ना अभी, ये लाल लाल सिंधी अक्षर, ये बाबा के होते थे ये, और जो सिंधी नहीं जानते थे उनके, तो ये बीच में हिंदी में ट्रांसलेशन करके ये ईशु दादी, नीले से लाल अक्षर, ये बाबा के हैं। तो बाबा इतने रोज, बाबा को कितने पत्र लिखने होते थे, तो बाबा यहाँ बैठ के ही पूरे विश्व भर की सेवा पत्रों के माध्यम से, एक एक बच्चे को पत्र लिख करके बाबा ऐसे करता था, और जो सिंधी नहीं जानते थे वो उनका हिंदी में ट्रांसलेशन ये। नेक्स्ट पल्ट, ये इस तरीके से ये पत्र एक के बाद एक, ऐसे कई सारे ये पत्र हैं ये, जिनके की अंदर बाबा पहले से ही ना वो सारी आने वाली घटनाओं की भी भासना दे देता था कि ऐसा है। वहां पर माताएं ज्यादा आती थी, और हमारा तो ज्ञान धारणा का है, तो एक बार ऐसे हुआ, उनके कईयों के पति लोग वगैरह विघ्न डालते थे, वो नहीं आने देते थे। तो बस बाबा ने जैसे पहले ही एक पत्र में इस तरह लिख के इसकी भासना दे दी थी कि भाई ऐसा, ये उनकी संभाल करनी है, इसमें लिखा है माताओं की बहुत बहुत संभाल करनी है, उनके मतलब विकारी पतियों की तो जैसे राजा ही जाने लगती है, ऐसा महसूस करते हैं। तो हर रीति से सेवा का बाबा सावधानी भी देता रहता था। तो इस रीति से ये सारा का सारा ये बाबा पत्रों के द्वारा, ये तो देखो बाबा के साथ का एक ये फोटो है, यही कही करो, तो ये उसके अंदर, हाँ यस, तो ये भी एक सौभाग्य की बात है बाबा के साथ रहने का। वैसे बाबा कभी भी कोई बाबा के पास आता था, बाबा कहता था किसका फोटो खींचोगे बच्चे, शिव बाबा का तो फोटो निकल नहीं सकता। तो ये बाबा, ये वहाँ कौन बहन है, कोई पहचानते हैं? ये है सुरेंद्र बहन, जो बनारस जोन की हेड है वो। और उस समय ये एक थाईलैंड से भाई आके ये भी पढ़ता था, और वहाँ पर थाईलैंड के वहाँ प्रिंसेसली फैमिली का था है। और ये उस समय ये हमारा फोटो, और ये विनोद भाई जो अभी नीचे शांतिवन में। तो समझ सकते हैं आप कि कितने साल पुराना, और ये बाबा के साथ। और ये बैकग्राउंड कौन सी है? हाँ, हिस्ट्री हॉल के बाहर ही वहाँ पर जहाँ लॉन वगैरह है वहाँ। तो बाबा के साथ रहने का, हर चीज में बाबा कहता था। ये तो विदेशी भाई था और उसने इच्छा करी नहीं, तो बाबा ज्यादातर करके फोटो वगैरह नहीं। बच्चे शिव बाबा का तो फोटो क्या निकालोगे, वो तो बिंदी है, वो तो आएगा नहीं। और ब्रह्मा से तो कुछ प्राप्ति होती नहीं, ब्रह्मा तो दलाल है बीच में, ऐसा कह के बाबा बस वो कर देता था कि बच्चों की बुद्धि ब्रह्मा बाबा में भी ना अटके। लेकिन ये है कि बाबा के साथ कई ऐसे हैं तो जो इस बात की स्मृति को पुनः ताजा कर देते हैं। देखो भगवान के साथ रहने का साकार में आके जो पार्ट बजाए है उसने वो। तो ये पत्र तो एक आध सैंपल बताया, लेकिन लगभग 10-12 पत्र तो बहुत हैं थे उस समय। कई छपने के लिए ज्ञानामृत में भेज दिए थे, कई अलग अलग, लेकिन इसमें भी करीब 10-12 पत्र हैं, लेकिन एक सैंपल आपको दिखा दिया। तो बाबा पहले कैसे बच्चों को अपनी स्वस्थिति में स्थित करके पत्र लिखा था। नूरे रतन सुदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण कुल भूषण दिल तख्त नशीन, बच्चे का नाम लिख करके और याद प्यार बात समाचार ऐसे करके। तो हर व्यक्ति को ये भी एक सेवा का साधन है, हम जिसकी भी सेवा करें पहले उसका मूड रिसेप्टिव बनाए, यानी कि जो बाबा कहता है उसकी महिमा। यहाँ भी हमने कई बार देखा, दादियां भी और बाबा भी, कोई बच्चा सर्विसेबल है लेकिन कोई गलती हो गई, यज्ञ का नुकसान हो गया, तो सीधा ही उसे वो नहीं करेंगे, डांटेंगे नहीं, या वो पहले बुला करके पहले उसकी महिमा करके, देखो तुमने ये सेवा करी बहुत अच्छी, इसके द्वारा ये यज्ञ को फायदा हुआ, ऐसे करके 3-4 पुराने दृष्टांत याद करके उसका मानसिक स्तर जैसे कि ना ऊंचा करके, जिससे वो स्वीकार करने योग्य हो जाए। नहीं तो एक तो गलती करी और आप तुरंत वो करेंगे तो वो उस बात को स्वीकार नहीं, उसका अहम ईगो वो अफेक्टेड हो जाता है। इसीलिए कहीं भी प्रेज इन मतलब पब्लिक एंड डायरेक्शन इन प्राइवेट, यानी प्रेज करना हो, महिमा करनी हो, वो पब्लिक में करें, लेकिन जब भी कोई अगर सावधानी देनी हो, शिक्षा देनी हो, तो अलग से बुला के देंगे, तो उस व्यक्ति का अपमान की महसूसता उसे नहीं होगी। और ये बाबा का देखा, तो इस रीति से कितना मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल आजकल पढ़ाए जाते हैं वो सारे के सारे बाबा के जीवन में प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होते थे। इतना बड़ा यज्ञ चलाना कोई साधारण बात तो नहीं है। इस तरीके से वहां पर सेवा होती रही, और बाबा ने फिर, हमें याद है हा? जनवरी का महीना था ऐसे ही, और 1969 और बस ऐसे ही देहरादून से पत्र आया, वहां से हम आए हुए थे कि भाई यहाँ म्यूजियम बनना है, आप थोड़े दिन छुट्टी लेके आ जाओ। तो हमने कहा ठीक है, हमने बाबा से पूछा पहले तो ना, कोई भी बात होती थी जैसे अभी दादियों से पूछते हैं, बाबा से पूछा तो बाबा ने कहा बच्चे जाओ भले, लेकिन पहले मधुबन आओ और प्लेन से आओ, फ्लाइट से आओ। अब इतने समय पहले की बात 69, लेकिन बाबा का जैसे इंडिकेशन, और बस जल्दी से ही हमने ना टिकट कटाया और मधुबन में पहुंच गए 17 जनवरी को 1969। तो देखो बाबा ने कहा था, बाबा ने भेजा था इतनी दूर आसाम, कि बाबा भेज रहा है और बाबा समय पर बुला लेगा। तो देखो अंतिम समय पर जब बाबा की कर्मातीत अवस्था थी, उस समय बाबा ने अपने पास बुला लिया, और 17 और 18 जनवरी को बाबा की पूरी कर्मातीत अवस्था देखने का मौका मिला। वो तो एक बहुत लंबी बात है, कई बार एक दो बार यहाँ बताई भी है, अभी आज तो समय के अभाव में नहीं बता सकेंगे, लेकिन हम सभी का लक्ष्य है कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करना। तो वो एक बात खास कि कैसे जब आत्मा कर्मातीत अवस्था के निकट होती है, प्राप्त होती है, तो जानी जानन हार की बाप समान स्थिति, क्योंकि उस समय भी यार हम लोग मतलब नेक्स्ट टू गॉड, ईश्वर समान, ईश्वर तो नहीं बनता, कोई भी आत्मा परमात्मा तो नहीं बनती, लेकिन बाबा जैसे ज्ञान का सागर है तो हम भी मास्टर ज्ञान स्वरूप पूरा ज्ञान सागर बन जाते हैं। प्रेम का सागर है तो हम भी मास्टर प्रेम का सागर, यानी वो गुण परमात्मा के सब अपने स्तर पर हाईएस्ट लेवल पर आ जाते हैं। तो हमने ये अनुभव किया 17-18 जनवरी को हम थे, बाबा से कई बार मिले और बाबा बस जैसे बाबा कहता है समेटते जाओ, तो बाबा धीरे 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 सब चीज समेटता जा रहा था मानसिक। पहले बाबा से मिलते थे, बाबा बात करता था, समय देता था, ये करो बच्चे ऐसे करो, और बस बाद में हमने देखा थोड़ा सा भी बोला एक सेकंड, हाँ हाँ बच्चे, बाबा समझ गया, बस ऐसा करके एक मिनट या आधा मिनट से ज्यादा बाबा ने, और खुद फिर अपने उसमें तल्लीन हो जाता था। प्रैक्टिकल हर चीज का बाबा कहता है, इतनी खुशी हो तुम्हारे चेहरे पर जीवन में जो सदा खुशी में क्या करो, कौन सा शब्द यूज करता है बाबा, हाँ खुशी में खग्गियां मारनी चाहिए। कैसे मारते हैं खग्गियां पता है, हाँ बाबा को बताया था, बाबा बताता था करके हो बच्चे, क्योंकि सामने लक्ष्मी नारायण का चित्र रखा रहता था कृष्ण का, और बाबा को कई बार खांसी भी आती थी, खांसते खांसते भी आंख में पानी जैसा भी आ जाता था, फिर भी दूसरे ही क्षण, अरे बच्चे देखो अभी ये पुराना शरीर है, खांसी आ रही है, ये तो बाबा की पुरानी सखी है। और मैं शिव बाबा को कई बार कहता हूँ, बाबा इस सखी से मुझे थोड़ा छुड़ाओ, इससे पिंड मेरा छुड़ाओ, तो शिव बाबा क्या बोलता है, नहीं बच्चे ये तो तुम्हारा कर्मों का हिसाब किताब है, तुम्हें चुकतू करना ही है, ये नहीं कि मैं तुम्हारे तन में आया भले उसका भाड़ा मैं देता हूँ, लेकिन कर्मों का हिसाब है तो तुम्हें इसको चुकतू करना ही है। तो जब ब्रह्मा बाबा को कोई कंसेशन नहीं तो आपको या मुझे कोई कंसेशन होगा हिसाब किताब, तो इसलिए हिसाब किताब चुकतू करने में बिल्कुल भी खुशी गायब ना हो, इसलिए बस खांसते ये होता था दूसरे ही क्षण, अरे कल बाबा जाके ऐसा कृष्ण बनेगा। हिस्ट्री हॉल में जाके आप देखोगे लक्ष्मी नारायण का ट्रांसलेट कृष्ण का, कल बाबा जाके ऐसा मिचनू कृष्ण बनेगा, वाह बच्चे वाह, देखो बाबा को कितनी खुशी है, ऐसे खग्गिया मार के ये बता के। बाबा कहता था बच्चे कुछ भी हो जाए कभी भी क्या नहीं करना है, जो मुरली में कल परसों भी आया, रोना नहीं है कोई भी परिस्थिति में, यानी दुख की लहर हमारे भले परिस्थिति आएंगी परीक्षा होंगी, और ये कहने की बात नहीं है, बाबा उसका साकार मूरत था। इतने बड़े बड़े यज्ञ की बातें आती थीं और उसके अंदर, लेकिन बाबा कहता था कोई बात नहीं बच्चे ये भी ड्रामा, ऐसी बड़ी बड़ी परिस्थितियां बड़ी बड़ी परीक्षाएं, लेकिन बाबा हर चीज को उस रीति से सहज रीति से ले लेता था। तो एक तो ये शिक्षा ले, दूसरी बात कि बाबा ने जो कहा ना कि बच्चे कर्मातीत अवस्था, तो जो बाबा कहता है इच्छा मात्रम अविद्या। हम बाबा के पास गए 17-18 जनवरी को कई बार, बाबा से ये पूछेंगे, बस बाबा ने थोड़ा यूं दृष्टि बाबा देता था ऐसे, और अच्छा बच्चे ये पूछने आए हो, अच्छा ऐसा कर लो ऐसा हो जाए, यानी कि हमें बताने की जरूरत भी नहीं पड़ती थी, मन के प्रश्न भी बता देता था, उसका समाधान भी दे देता था, उत्तर भी दे देता था। तो इसके अंदर ये देखो क्या कमाल की बात, तो जब आत्मा कर्मातीत अवस्था के निकट होती है ना, तो उसके अपने संकल्पों पर इतनी विजय हो जाती है कि दूसरे के संकल्पों को वो तुरंत पढ़ लेती है आत्मा, और खाली पढ़ती नहीं, दूसरे के संकल्पों को जानकर उनकी इच्छा को पूर्ण कर देती है। हमारा अनुभव 18 जनवरी को बाबा अंतिम क्लास करा रहे थे हिस्ट्री हॉल में, हम भी सामने बैठे हुए थे, तब तो बाबा के थोड़े ही बच्चे होते थे 25-30, बच्चे बैठे हुए थे सब सामने, तो सुनते सुनते हमारे मन में एक इच्छा हुई। क्या? जैसे अभी भी इच्छा होती है, बाबा की मुरली तो सुनते हैं, 18 जनवरी को भी सुनेंगे कि अरे क्या हो, बाबा के पास जाने का मौका मिल जाए, बाबा के हाथ से टोली मिल जाए या बाबा की दृष्टि मिल जाए। कई बार होता है ना ये, तो बैठे बैठे सुनते सुनते मुरली रात्रि क्लास में हमारे मन में इच्छा हुई कि बाबा कुछ मतलब हमारे लिए व्यक्तिगत रीति से कुछ बोले जो हमारे पुरुषार्थ में आगे के लिए एक माइलस्टोन बन जाए, मार्ग प्रदर्शक बन जाए। तो बस हमारे मन में संकल्प आया, संकल्प आने की देरी नहीं हुई और वो आत्मा तो कर्मातीत थी बाबा जो बैठा था। तो जैसे भक्तों की इच्छा भगवान पूरी करते हैं ऐसी तो साक्षात भगवान बैठे हुए, तो कर्मातीत अवस्था, तुरंत जैसे उन्होंने हमारी इच्छा को मन का संकल्प पहुंचा और तुरंत ही अगले क्षण बाबा ने नाम लेकर के मुरली में और बस कई महावाक्य उच्चार दिए। तो ये जो पार्ट बाबा का देखने को मिला और बाबा बोलता है कि एक एक पार्ट जो ब्रह्मा बाबा का साकार में, तो हम सब भी कौन है? ब्रह्मा कुमार कुमारिया, ब्रह्मा के द्वारा जो जो पार्ट चले हैं वो एक एक हम बच्चों के द्वारा भी चलने हैं। अंत में इतनी आत्माएं आएंगी, हम सबको भी उनकी इच्छाओं को जान करके उनकी इच्छाओं को पूर्ण करना होगा। अंत में कोई साक्षात्कार की इच्छा लेके आएगी, कोई आत्मा जो भी उनकी इच्छाएं होती हैं, दुख से जो बाबा ने कहा है रोती हुई आत्मा आए हंसती हुई जाए, अशांत आत्मा आए शांति के सागर में लहराती हुई चली जाए। इस तरीके से ऐसी बहुत आत्माएं आएंगी हमारे सम्मुख आते ही, और कब हम उनकी इच्छाओं को पूर्ण कर सकेंगे? जब हमारे मन की इच्छा कोई नहीं होगी, हम खुद इच्छा मात्र अविद्या होंगे, तो उनकी इच्छाओं को पढ़ सकेंगे और तुरंत ही बस उनकी इच्छाओं को तथास्तु जो कहा गया है गायन है उनकी इच्छाओं को पूर्ण कर सकेंगे। तो अभी हमारा यही पुरुषार्थ होना चाहिए जो बाबा ने कहा, हम सब कर्मातीत स्थिति के राही हैं, कि धीरे धीरे हमारे अंदर की इच्छाएं कोई भी हो, इच्छा बाबा ने कहा इच्छा क्या नहीं बनने देती, अच्छा नहीं बनने देती, भले शुद्ध इच्छा भी है भाई हमारा पति की बुद्धि का ताला खुल जाए, फलाना ज्ञान में आ जाए, ये हो जाए, लेकिन इच्छा तो इच्छा ही है ना। हाँ, उनके प्रति हम विश्व की समस्त आत्माओं के प्रति योगदान करें, लेकिन किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर हम बहुत टाइम समय एनर्जी ना दें। पूरा विश्व हमारा है, वसुधैव कुटुंबकम। हाँ, व्यक्ति विशेष को भी हम योगदान दें, उनको भी उठाएं, लेकिन उन्हीं के पीछे ही अगर हमारा पूरा एनर्जी टाइम चला जाएगा तो संसार की समस्त दुखी अशांत आत्माओं की सेवा कब करेंगे। इसीलिए बाबा चाहता है कि हम खुद इच्छा मात्र अविद्या होते जाएं, जिससे संसार की सब आत्माओं की इच्छाओं को पूर्ण कर सके। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।